हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सिद्धार्थ ने उसे ऐसा देखा मानो वो किसी कार्टून को देख रहा हो। उसके बोलने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो सिर्फ प्लीज बोलने का नाटक कर रही है। फिलहाल सिद्धार्थ जल्दी ही अपने छोटे से किचन की तरफ चला गया, जो कि उसके कमरे में ही एक तरफ बना हुआ था। वहां पर सिद्धार्थ की जरूरत का सारा सामान मौजूद रहता था, क्योंकि सिद्धार्थ हुराना हुराना विला में और इस नाइट क्लब के तीसरे फ्लोर पर बने अपने अपार्टमेंट में ज्यादा समय गुजारता था। फिलहाल सिद्धार्थ जल्दी ही किचन में गया और केवल कुछ मिनटों के अंदर अंदर खिचड़ी लेकर झलक के सामने मौजूद था। अब तो झलक अपनी आंखें फैलाकर उसकी और चमकती हुई आंखों से गौर से देखने लगी और सिद्धार्थ की चुटकी लेते हुए बोली, अरे वाह, आप तो अपने काम में कुछ ज्यादा ही माहिर हैं। आपने पहले से खाना बनाकर रखा था। अब झलक बिना कुछ सोचे खाने पर टूट पड़ी। चम्मच लेकर वो बड़ी तेजी से खाना खाने लगी और एक दो बार दूसरे चम्मच से भी खाया, और जब उससे रुका नहीं गया तो उसने पूरा कटोरा अपने मुंह से लगा लिया था। कुछ खाना उसके होठों और मुंह के बाहर भी लग गया था, लेकिन इस वक्त वो बड़ी तेजी से खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने जल्दी से खाना खत्म नहीं किया तो सिद्धार्थ उसके हाथों से खाने का कटोरा छीन लेगा। वहीं सिद्धार्थ चिढ़कर उसकी अजीब हरकतों को गौर से देख रहा था। खाना खाते खाते अचानक झलक कुछ पल रुककर चंचलता से बोली, देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में एक बहुत अच्छे आदमी बनोगे, रियली। अब झलक ने जैसे खाते खाते ये कहा, सिद्धार्थ केवल उसे बदले में खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा। वेल, अब खाते खाते अचानक झलक फिर हंसते हुए बोल पड़ी, अच्छा, मैं खाना खाने के बाद दादी से मिलने जाना चाहती हूँ। आखिरकार उन्होंने मुझे बचाने के लिए तुम्हें जर्मनी तक भेजा था। अभी भी झलक को यही लग रहा था कि दादी ने ही सिद्धार्थ को उसे बचाने के लिए भेजा होगा, वरना तुम मुझ पर अपना समय क्यों बर्बाद करते। झलक सिद्धार्थ से बेझिझक बात किया करती थी, हालांकि सिद्धार्थ के सामने कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, लेकिन झलक तो झलक थी, एकदम बिंदास, जो कहना है वो कह देती थी, चाहे उसका गला क्यों ना कट जाए। फिलहाल अब उसकी ये वाली लाइन सुनकर सिद्धार्थ का पारा चढ़ गया। उसने आगे बढ़कर खिचड़ी का कटोरा उससे छीन लिया। अब तो झलक बौखला गई और हड़बड़ाहट में बोली, ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरा कटोरा क्यों छीन लिया, मुझे और खाना है, अभी भी मुझे बहुत भूख लगी है, छोड़ो मुझे, दो मुझे खाना है। ये बोलकर अब झलक सिद्धार्थ पर झपटी और उसके हाथ से जबरदस्ती कटोरा छीन लिया, और जैसे ही कटोरा लेकर हल्का सा मुड़ी, अचानक पीछे से सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में कस कर पकड़ लिया और उसके कानों के पास झुकते हुए फुसफुसाते हुए बोला, कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? अब जैसे ही सिद्धार्थ ने धीमी आवाज उसके कानों को चूमते हुए ये सवाल पूछा और सिद्धार्थ उसके बहुत करीब था, झलक काफी हद तक पसीने से तरबतर हो गई थी और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही और परेशान होते हुए बोली, शायद आप भूल रहे हैं, आपकी शादी आकांक्षा से होने वाली है और कहीं आप मुझे आकांक्षा तो नहीं समझ रहे हैं? देखो, उसका और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? जैसे ही झलक ने ये बोला, सिद्धार्थ उसे प्यार से घूरता रहा। तब झलक अब बात बदलते हुए उसे चेतावनी देते हुए ऊंची आवाज करके बोली, देखो, अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा दादी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, देखो, उसके जिम्मेदार फिर तुम खुद होगे। ये बोलकर झलक जल्दी ही बचा हुआ खाना खाकर एक लंबी सी डकार लेने लगी। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके डकार लेने से सिद्धार्थ को उसके बारे में क्या सोचेगा, उसे इससे कोई मतलब नहीं था, और शायद सिद्धार्थ को उसकी बिना दिखावे वाली आदतें बेहद पसंद आई थीं। फिलहाल खाना खाने के बाद झलक ने अपना चेहरा साफ किया और सिद्धार्थ की ओर देखकर हल्की मुस्कान से बोली, अब मैं जाना चाहूंगी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना है। ये बोलकर झलक अब जाने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन तुरंत सिद्धार्थ उसे टोकते हुए बोल पड़ा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कहाँ जाना चाहती हो? अब सिद्धार्थ के ये कहने पर झलक को कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी अगर वो सिद्धार्थ के साथ रहती है तो हो सकता है कि वो सुरक्षित रहे, और ऐसा सोचकर वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है और जल्दी ही वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट के थ्रू वो दोनों सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। उन्होंने देखा कि बाहर उनका असिस्टेंट खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। रौनित को देखकर झलक उसकी ओर हल्की स्माइल करते हुए बोली, हे रौनित, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो? झलक बड़े ही दोस्ताना तरीके से उससे बात कर रही थी। आज तक रौनित और झलक में सिर्फ और सिर्फ बहस या झगड़ा ही हुआ था, लेकिन आज तो झलक बड़े प्यार से पेश आ रही थी। रौनित हैरान और असहज हो रहा था। सबसे ज्यादा हैरान तो उसकी खूबसूरती को देखकर था, और वो बड़े करीब से उसे एक तक घूरे जा रहा था। वहीं सिद्धार्थ अब गुस्से में घूरकर रौनित को देख रहा था, मानो कि उसे कहना चाह रहा हो कि झलक को इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब तक सिद्धार्थ की गाड़ी उसके सामने आ गई थी, और सिद्धार्थ और झलक पीछे वाली सीट पर बैठे और रौनित को आगे की सीट पर बिठाया। इस वक्त रौनित के हाथों में झलक की पूरी जन्म कुंडली थी, उसकी पूरी पर्सनल डिटेल्स थी, जो कि सिद्धार्थ ने ही निकलवाने के लिए कहा था। तब जल्दी से गाड़ी में बैठने के बाद सिद्धार्थ झलक की ओर देखकर रोबदार आवाज में बोला, कहाँ जाना चाहती हो तुम? बताओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। झलक एकदम से बोली, वो सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ खो गया है, शायद वो फ्लैट में लगी आग में जल गया है, तो बस उसी के लिए सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। झलक की बात सुनकर सिद्धार्थ हल्का मुस्कुराते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड के लिए रौनित ने वहाँ जाकर पहले ही सारा काम संभाल लिया है, वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर झलक हैरान और खुश हो गई। वहीं रौनित चौंक गया कि उसने कब आइडेंटिटी कार्ड निकलवाया। पहले जब वो बस 5 दिन के लिए जर्मनी गए तो उन्होंने उसे झलक को ढूंढने में लगा दिया, फिर उसे वहां से बचाकर लेकर आए तो फिर उसके पर्सनल डिटेल्स पता लगाने में लगा दिया, तो कब वो पुलिस स्टेशन चला गया? रौनित को यकीन नहीं हुआ कि सिद्धार्थ खुराना झूठ भी बोल सकता है। फिलहाल ये सुनकर झलक को राहत महसूस हुई और वो चहकते हुए बोली, ठीक है तो मैं दादी से मिल लेती हूँ, वैसे भी दादी परेशान हो रही होगी। सिद्धार्थ झलक की ओर शांत और गंभीर आवाज में बोला, तुम किडनैप हो गई थी, ये बात दादी को नहीं पता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उनके दिमागी प्रॉब्लम है, अगर उन्हें ये बात पता चल जाती है तो वो खामखा परेशान हो जाती और उनकी तबीयत बिगड़ जाती, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। अब ये सुनकर झलक चुप हो जाती है और शांत आवाज में बोलती है, ठीक किया तुमने कि तुमने मेरे बारे में दादी को कुछ नहीं बताया। और फिर कुछ सोचते हुए पूछती है, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? वो मुझे अपनी माँ से बात करनी है। ये बोलकर उसने सिद्धार्थ से उसका फोन मांग लिया था। सिद्धार्थ ने बिना ना कहे उसके हाथों में अपना फोन थमा दिया, और जल्दी ही झलक ने स्नेहा जी को फोन लगा दिया था। स्नेहा जी ने झलक की आवाज सुनकर सुकून भरी आवाज में बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तब झलक हामी भरते हुए जल्दी से बोली, ओबेरॉय परिवार चाहे पूरी मीडिया के सामने मुझे अपनी बेटी कहें या कुछ भी कहें, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको मुझे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ही बेटी रहूंगी। झलक ने पूरी तरह से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की थी कि वो किसी बात को लेकर परेशान ना रहें। तभी स्नेहा जी की आंखें भर आई थीं।
कहीं ना कहीं झलक उनका दुख दर्द महसूस कर रही थी, और फिर उन्हें आश्वासन देते हुए बेहद शांत आवाज में बोली, आप लोग परेशान मत होइए, मम्मी मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने भी आऊंगी, ठीक है? तब स्नेहा जी सुबकते हुए भरी आवाज में बोली, बेटा तुम अपना ध्यान रखना, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो लोग कितने खतरनाक हैं और तुम्हारे जान के प्यासे हैं, कहीं वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश न करें। दोस्तों, अभी मैं अपनी एक ऑडियो सीरीज में बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को डेली अब 2 चैप्टर नहीं दे पाऊंगी, 1 ही चैप्टर दे पाऊंगी। आई होप आप लोग समझेंगे, प्लीज अपना साथ बनाए रखें।